तेरे इश्क में खुद को भुला बैठे हैं, हर सांस को तुझसे मिला बैठे हैं। न देखा वक्त न सोचा सबब, जुनून में तेरे सब लुटा बैठे हैं। न था कोई वादा न थी कोई राह, तेरी मोहब्बत को ही खुदा समझ बैठे हैं। बेइंतहा चाहा है तुझको सनम, अब तुझसे जुदा हुए तो खुद से फना हुए बैठे हैं। आस्तिक रायचंद की जिंदगी में नॉर्मल क्या ही चीज रही है जो मोहब्बत उसे आराम से रास आ जाती। अरुणिमा के लिए जुनून उसने तब महसूस किया था जब डॉक्टर की मदद से वो पहली बार क्लिनिक से भागी थी। अरुणिमा के लिए तड़प उसने तब महसूस की थी जब उसका किडनैप हो गया था। और मोहब्बत, इस बात पर उसे तब यकीन आया जब एक अनजान शख्स ने उस पर गोली चलाई थी। नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल लोगों के लिए होती है, आस्तिक रायचंद के लिए नहीं। जिसने उसकी किस्मत लिखी है उसने भी यही सोचकर लिखा होगा कि आस्तिक का हर दिन तूफानी ही रहेगा। जिस लड़के ने आस्तिक को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसने उसके ऊपर खंजर से वार किया था, उसी को अरुणिमा ने उसकी बंदूक से शूट कर दिया था। वो लड़का वहीं पर मर गया था। लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी अरुणिमा ठीक नहीं हुई थी। वो अब भी कांप रही थी, उसके हाथ लगातार थरथरा रहे थे, कनपटी पर पसीने की बूंदें जमी हुई थीं और हर दूसरी सांस के बाद वो एक लंबी हिचकी ले रही थी। उसकी आंखें डर से पीली पड़ गई थीं। आस्तिक उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? लेकिन अरुणिमा बस रोते हुए एक लंबी हिचकी लेती है और अगले ही पल उसके सीने पर अपना माथा रख देती है। आस्तिक ने अब तक शर्ट नहीं पहनी थी, लेकिन उसकी कमर पर पट्टी बन चुकी थी। जैसे ही अरुणिमा ने उसका कंधा थामा, आस्तिक ने उसे एक हाथ से अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए उसे सहारा देते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं हूं यहां, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो लड़का मरा था, आस्तिक ने तुरंत नीरज को कॉल कर दिया और सारी सिचुएशन बता दी। नीरज ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर भी पहुंच गए थे और आस्तिक की स्पेशल टीम भी। अब फर्क क्या पड़ता है? आस्तिक ने यह घर इसलिए लिया था क्योंकि उसे यहां सुकून चाहिए था, दुनिया के शोर से दूर रहना था। लेकिन सुकून तो शायद उसकी किस्मत में है ही नहीं। जब उसके दुश्मन यहां तक पहुंच सकते हैं तो अब क्या ही बचाना है। अब उसे इस घर की नहीं, अरुणिमा की फिक्र थी। उसने अपनी सिक्योरिटी टीम और सारे जरूरी लोगों को बुला लिया था। नीरज भी उन्हीं में शामिल था। जब आस्तिक का ट्रीटमेंट चल रहा था, नीरज वहीं खड़ा था और उसने अरुणिमा की डरी हुई हालत देख ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, अरुणिमा तो आस्तिक के साथ ही रही है, तो फिर वो अभी तक इन सबसे वाकिफ क्यों नहीं हुई? पर उसे क्या पता था, अरुणिमा ने आज तक बस खून बहते देखा था। ये पहली बार था कि उसने खुद किसी की जान ली थी। डॉक्टर जब आस्तिक का इलाज कर रहे थे तो उसकी नजर सिर्फ अरुणिमा पर थी। उसे देख सकता था कि डर ने कैसे उसका रंग उतार दिया है। आस्तिक कभी नहीं चाहता था कि अरुणिमा हथियार उठाए, उसे तो बंदूक चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन आज उसने पहली ही बार में सीधे माथे के बीचों बीच गोली मारी थी। डॉक्टर जब उसके जख्मों पर पट्टी लगा रहे थे तो आस्तिक को दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। अरुणिमा को देखकर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, माफिया लेडी डॉन। उसे गहरा जख्म नहीं लगा था और कोई भारी नुकसान भी नहीं हुआ था। ऐसे छोटे मोटे घाव तो वो 10 दिन में ठीक कर ही लेता है। इस वक्त उसे खुद की नहीं, बस अपनी अरुणिमा की फिक्र थी। डॉक्टर के जाते ही नीरज एक सिक्योरिटी हेड को लेकर गेस्ट रूम में चला गया। वो आस्तिक को अकेला नहीं छोड़ सकता था और रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए आस्तिक ने उन्हें यहीं रुकने को कहा। वो अरुणिमा के पास आया और उसे सहारा दिया। अरुणिमा उसके सीने से चिपक गई थी, उसने आस्तिक के बाइसेप्स को कसकर थाम लिया था। आस्तिक ने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाया और कान में फुसफुसाया, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आस्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार अरुणिमा सो गई। हालांकि वो अब भी कभी कभी कांप रही थी, लेकिन आस्तिक की मेहनत रंग लाई। वो नींद में जा चुकी थी और इस वक्त उसे नींद की बेहद जरूरत थी। आस्तिक ने उसे दुल्हन की तरह गोद में उठाया और बेड तक ले गया, कमरे का तापमान सेट किया और अरुणिमा को ब्लैंकेट से ढक दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा आधा खुला था। आस्तिक ने दरवाजे की ओर देखा और उंगली होठों पर रखकर शोर न करने का इशारा किया। डोर पर आगे खड़ा नीरज जल्दी से खुद को सतर्क करता है और अंदर नहीं आता, बल्कि बाहर ही खड़ा रह जाता है। अरुणिमा को ब्लैंकेट से ढकने के बाद आस्तिक उसके माथे को चूमता है और उसके बालों की लट को कानों के पीछे करते हुए उसे बेहद प्यार से देखता है। उसने दो तकिए अरुणिमा के आसपास हेडबोर्ड से लगा दिए ताकि नींद में उसे ज्यादा बेचैनी महसूस न हो। कुछ देर तक आस्तिक उसे यूं ही नींद में देखता रहा। उसका तो मन कर रहा था कि पूरी जिंदगी अरुणिमा को यूं ही सोता हुआ देखता रहे। उसके होंठ हल्के से खुले थे जिनसे वो सांस ले रही थी और उसकी सांसों की वो धीमी धीमी धुन आज उसे बहुत मीठी लग रही थी। इरादा तो यही था कि सारी रात अरुणिमा को यूं ही देखता रहे, लेकिन इस वक्त उसके पास एक जरूरी काम था। जो शख्स आस्तिक के घर और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में घुस सकता है वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आस्तिक को इसे जड़ से खत्म करना था। अरुणिमा उसके लिए बेहद जरूरी थी, लेकिन उसकी सुरक्षा उससे भी ज्यादा मायने रखती थी। वो जल्दी से अलमारी के पास गया और अपने लिए एक प्लेन शर्ट निकालकर पहन ली। कमरे में इमरजेंसी लाइट ऑन करने के बाद आस्तिक ने दरवाजा धीरे से खोला और बिना आवाज किए बंद कर दिया ताकि अरुणिमा की नींद में कोई खलल न पड़े। जो इस वक्त कमरे के अंदर था वो अरुणिमा का नया नया आशिक था, लेकिन जो कमरे के बाहर था वो बीस्ट था, आस्तिक रायचंद, माफिया किंग। बाहर आते ही आस्तिक के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसका चेहरा एक बार फिर से माफिया के खूंखार रूप में ढल गया। उसने नीरज की ओर देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, कुछ बोला उसने? नीरज तुरंत बोला, नहीं बॉस, सीसीटीवी फुटेज से हमें उस इंसान का पता चल गया है जो आपके घर में ड्राइवर बनकर आया था। हमने उसे पकड़कर अड्डे पर ले गए हैं। इतना मारा है कि मरने के कगार पर है, लेकिन उसने अब तक मुंह नहीं खोला और ना ही किसी का नाम लिया है। आस्तिक की खतरनाक नजरें देखकर नीरज झिझकते हुए बोला, नहीं सर, उसका चेतन सर या आपके किसी बड़े दुश्मन से कोई लेना देना नहीं है। आस्तिक को पहले लगा था कि शायद चेतन, उसका सौतेला भाई, इस हमले के पीछे हो सकता है, लेकिन ड्राइवर का चेतन से कोई लेना देना नहीं था और ना ही उस लड़के का जो आज आस्तिक को जान से मारने आया था। यहां तक कि किसी भी पुराने दुश्मन से भी उसका कोई संबंध नहीं बन रहा था। थोड़ी देर बाद आस्तिक स्टडी रूम में था। नीरज और उसका स्पेशल बॉडीगार्ड हेड मार्क भी वहीं मौजूद थे। आस्तिक अपनी स्टडी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी और आंखों में लाल अंगारे। मार्क ने कहा, बॉस, हमने हर सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर लिया है और सारे सिक्योरिटी हेड्स को इस बारे में सूचना दे दी है। पूरी जगह की अच्छी तरह तलाशी ली जा रही है। फिक्र मत कीजिए, वो जो भी है जो हमारे बीच रहकर हमसे गद्दारी कर रहा है हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। जल्द? कितनी जल्द? आस्तिक ने घूरते हुए पूछा। मार्क की नजरें नीचे झुक गईं। इस सवाल का उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आस्तिक ने गुस्से में अपना दूसरा हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोला,
मेरे घर की पार्टी में घुसकर कोई मेरी बीवी के कमरे में जाता है, उसके साथ की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर देता है, फिर बाहर का कोई आदमी हमारे स्पेशल यूनिफॉर्म पहनकर मेरे घर में दाखिल होता है और मेरी बीवी को अपने साथ लेकर चला जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब एक अनजान शख्स मुझे जान से मारने की कोशिश करता है और तुम्हें लगता है कि ये सारे काम जल्दबाजी में हो गए होंगे।